आगे सबक देखिए भाई। फइन काना अइल मुस्नदु इलैहि बादा दुखूलिहा मारिफतन बिंतिफाई शर्तिन नकारति औ मफसूलन बैनहू अई बैन जालिकल मुस्नदि इलैहि व बैन ला बिंतिफाई शर्ति लित्तिसाल अला सबील मनइल खुलुव्वि सवा उनकान मांतिफाई शर्ति कौनिही मुजाफन औ मुशब्बहन बिही औला लाय नफी। जिन्स के इसम की बहस चल रही है। साहिब काफिया ने आपको बतलाया कि लाय नफी जिन्स का इसम अगर उसमें तीन शर्तें पूरी हों तो फिर वो मनसूब होगा। और तीन शर्तें क्या थीं? कि वो इसम ला के साथ मिला हुआ हो और नकेरा हो और मुजाफ या मुशाबे मुजाफ हो। तो ये तीन शर्तें पूरी होंगी तो लाय नफी जिन्स का इसम मनसूब होगा। इस पर एतराज होता था कि भाई कुरान में अल्लाह फरमाते हैं ला तसरीब अलैकुमुल यौमा, और इसी तरह कुरान में है ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाह। अब इन दोनों आयतों के अंदर ला तसरीबा ये तो मबनी अल फता है भाई, हालांकि इसके अंदर तीनों शर्तें पूरी हैं। ये ला के साथ मिला भी हुआ है, नकेरा भी है और नीज ये मुशाबे मुजाफ भी है, क्योंकि अलैकुम ये इसका सिला है भाई। और किसी लफ्ज के साथ जब सिला आता है तो सिले के बगैर उसका माना पूरा नहीं होता भाई। तो लिहाजा यहां तो ला तसरीबन होना चाहिए था, मनसूब होना चाहिए था, लेकिन इस पर तनवीन नहीं आ रही। हालांकि मानेए तनवीन यहां कोई चीज नहीं है। मानेए तनवीन मैंने बताया था दो चीजें हैं, एक अलिफ्लाम और एक इजाफत। तो ये तसरीब ना तो इस पर अलिफ्लाम दाखिल है और ना इसकी इजाफत हो रही है, लिहाजा इस पर नसब आना चाहिए था ला तसरीबन अलैकुम अलयौमा। तो लेकिन कुरान के अंदर तो ये मबनी अलल फता है। इसी तरह ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्ला, यहां पर भी ये जो आसिम है ये मबनी अलल फता है और यहां तीनों शर्तें पूरी हैं। ये ला के साथ मिला भी हुआ है, नकिरा भी है और मुशाबे मुजाफ है, क्योंकि मिन अम्रिल्ला इसका सिला आगे आ रहा है। और आप जानते हैं कि सिले के बगैर किसी लफ्ज का माना पूरा नहीं होता, तो बई एतबार ये भी क्या है? मुशाबे मुजाफ है भाई। तो उसका जवाब दिया था कि ये जो पहली आयत जो है ला तसरीब अलैकुमुल यौमा, इसके अंदर ये अलैकुम को तसरीब से न जोड़ें। इसको तसरीब से जोड़ेंगे तो फिर सारी खराबी और एतराज लाजिम आता है, बल्कि इस अलैकुम को तसरीब के लिए खबर बना दें। और जाब्ता यह है कि मस्दर मुबतदा या मुस्नद इलैह हो और आगे उसका सिला आ रहा हो तो उस सिले को उसके लिए खबर बनाना जायज है। इसमें फाइल या इसमें मफूल में तो ऐसा जायज नहीं कि सिले को उसके लिए खबर बना दिया जाए, लेकिन मस्तर में जायज है। तो लिहाजा ये ला का इसम सिर्फ तसरीब है। तो इसके अंदर अब पहली शर्त भी पूरी साथ मिला हुआ है, दूसरी शर्त भी पूरी के नकेरा है, लेकिन तीसरी शर्त पूरी नहीं है कि ये मुजाफ या मुशाबे मुजाफ नहीं है। और इस सूरत में ला नफी जिन्स का इसम मबनी होता है अलामत नसब पर, इसीलिए यह भी मबनी है अलामत नसब पर। और बाकी मैंने बतलाया था कि अलैकुम ये जार मजरूर ये भी जर्फ कहलाता है, लेकिन ये जर्फ है मजाजन, हकीकत में नहीं। और आगे अल यौम आ रहा है वो तो हकीकत में जर्फ है। जर्फ किसे कहते हैं? जिसमें जमाने या जगह का माना हो भाई। तो अब इन दोनों जर्फों में से आप जिसको चाहें खबर बना दें, या तो अलैकुम को खबर बना दें और अलैकुम से पहले साबितुन निकाल लें, और ये अल यौमा ये मफूल फी बन जाएगा इसी साबितुन के लिए। तो ये अलैकुम ये हो जाएगा ज़र्फ़े मुस्तकर, क्योंकि इसका आमिल महजूफ है, लेकिन वो आमिल जा चुका। अब ये सारा अमल ये अलैकुम कर रहा है, इसी के अंदर वो जमीर भी छुप गई, उसको भी ये खुद रफा दे रहा है और आगे अल यौमा को भी अब यही नसब दे रहा है। तो अलैकुम का आमिल हुआ महजूफ, या यूं कहो अलैकुम का मुतअल्लक जो है वह है महजूफ, और अल यौमा का आमिल जो है वह तो मजकूर है, तो वह ज़र्फ़े लग हुआ। अलैकुम क्या है? ज़र्फ़े मुस्तकर, और अलयौमा ज़र्फ़े लग हुआ। आप इसका बरअक्स भी कर सकते हैं कि अलयौमा इसके लिए साबितुन निकालकर इसको मफूल फी बना दें और अलैकुम को फिर उसी साबितुन से जोड़ दें, और वो साबितुन तो चला गया और अलयौमा ने उसकी जगह पकड़ ली, तो ये ज़र्फ़े मुस्तकर क्या हुआ? ये अब वो सारे अमल कर रहा है जो साबितुन कर रहा था, इसी अलयौमा के अंदर हुआ जमीर छुप गई भाई, तो ये उसको रफा भी दे रहा है और अलैकुम भी इसी से मुतालिक है, इसके अंदर भी यही अमल कर रहा है। तो इस सूरत में फिर अलयौमा ये ज़र्फ़े मुस्तकर है, खबर बनेगा, और अलैकुम ये इसके अंदर यही अलयौमा आमिल है, तो ये ज़र्फ़े लग़व हो जाएगा। और ला आसिम अलयौमा मिन अम्रिल्लाह, यहां पर भी अलयौमा इसको साबितुन से मुतालिक करके खबर बना देंगे, तो ये अलयौमा मफूल फी हो जाएगा साबितुन के लिए, और साबितुन के अंदर हुआ जमीर जो आसिम को राजे है, और फिर वो साबितुन चला गया, अब सारा अमल कौन कर रहा है? अलयौम, तो इसी के अंदर हुआ जमीर छुप गई, तो ये ज़र्फ़े मुस्तकर ये खबर हो गई आसिम के लिए, तवज्जो है। और मिन अम्रिल्ला उसको अब आसिम से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उसको जोड़ने से ही तो खराबी लाजिम आ रही थी, तो फिर उसका क्या करें? कहते हैं भाई उसको खबर नहीं बना सकते जैसे पिछली आयत के अंदर था, तो फिर इसके लिए फेले महजूफ निकाल लेंगे और उससे इसको मुतअल्लिक कर देंगे। फेले महजूफ वो फेले महजूफ जिस पर माकबल का कलाम दलालत कर रहा है, ऐ ला यासिम मिन अम्रिल्लाह, पिछले कलाम से क्या मालूम हुआ? ला आसिम अल्यौम, आज कोई बचाने वाला नहीं, तो उसी मदलूले कलाम से फेल निकाल लेंगे, ला यासिमो मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं है भाई। और फिर आपने पढ़ा था कि ला नफी जींस का इसम जो है जब वो मुफरद हो तो फिर वो मबनी होगा अलामत नसब पर। मुफरद होने का क्या माना? मुजाफ या मुशाबे मुजाफ न हो। तो यहां जजा शर्त के मुताबिक नहीं थी, फइन काना मुफरदन, अगर क्या हो मुफरद हो, फहुआ मबनी उन अलामा उन सबू भी ही, तो फिर वो मबनी होगा अलामत नसब पर। इधर देखिए, मुफरद होने का क्या माना? मुजाफ या मुशाबे मुजाफ न हो, तो यहां पर जजा जो है फहुआ मबनी उन अलामा उन सबू भी ही, यह शर्त के मुताबिक नहीं। इन्होंने क्या कहा? लाइन ऑफ जींस का ही समझा, मुफरद हो तो वो क्या होगा? मबनी होगा अलामत नसब पर। हम आपको दिखाते हैं मुफरद है लेकिन मबनी नहीं है अलामत नसब पर, जैसे जैदुन, ला जैदुन फिदारी वाला अमरुन। अब देखो ये जैदुन क्या है? ये न मुजाफ है और न मुशाबे मुजाफ, तो ये मुफरद हुआ। और आपने क्या कहा था? जब मुफरद हो तो मबनी होगा अलामत नसब पर, लेकिन यह तो मरफू है, ला जैदुन फिदारी वाला अमरुन। तो चूंकि यहां पर जजा जो थी वो शर्त के मुताबिक नहीं थी, सिर्फ मुफरद होना काफी नहीं है बल्कि पहली दोनों शर्तें भी पूरी होनी चाहिए। और ला जैदुन फिदारी वाला अमरुन, यहां तो पहली दो शर्तें पूरी नहीं है। पहली शर्त क्या थी? साथ मिला हुआ हो, और दूसरी क्या थी? नकेरा हो, और जैदुन ये तो नकेरा नहीं। तो मालूम हुआ सिर्फ मुफरद होना काफी नहीं बल्कि पहली दो शर्तों का होना भी जरूरी है। इसीलिए साहिब जामी ने दरमियान में इबारत निकाली और बतलाया के साथ भी मिला हुआ हो, नकेरा भी हो, और फिर उसके बाद वो मुफरद भी हो, यानी मुजाफ या मुशाबे मुजाफ ना हो, तो फिर इस सूरत में वो मबनी होगा अलामत नसब पर भाई। उसके बाद सबकी मिसालें भी इन्होंने जिक्र की और फिर ये भी बतलाया कि ये मुफरद जो है मुजाफ और मुशाबे मुजाफ के मुकाबले में आया है, इसलिए तस्निया और जमा इसके अंदर दाखिल है भाई। ये मुफरद तस्निया जमा के मुकाबले में नहीं है भाई। फिर यह भी साहिब जामी ने बतलाया कि यह मबनी क्यों होता है, वजह जिक्र की थी कि यह मुतजमीन है मीन को, किसको? मीन को मुतजमीन है, या यूं कहिए मीन के माना को मुतजमीन है, क्योंकि ला रजुला फिदार यह असल में है ला मीन रजुलिन फिदार भाई, और फिर उस मीन को तख़फ़ीफ़न हजफ कर लिया गया, तो यह रजुल मुतजमीन हुआ मीन के माना को। ये यूं कहें इसके अंदर मीन छुप गया, और मीन हर्फ है और मबनीउल असल है, तो और जिसके अंदर मबनीउल असल छुप जाए वो भी क्या बन जाता है? मबनी। तो लिहाजा इसलिए ये मबनी बन गया। इसी तरह मैंने बताया था जैसे अहदा आशारा, इसके अंदर वाव छुप गया तो ये मबनी बन गया। इसी तरह अमसी जो है इसके अंदर अलिफ्लाम असल में था अल अमसी, तो इसके अंदर अलिफ्लाम छुप गया तो इसलिए यह मबनी है भाई। और फिर यह भी बतलाया था कि भाई ये मबनी जब बनाया तो मबनी अल नसब क्यों बनाया? मबनी अल रफा बना देते या मबनी अल जर बना देते? तो जवाब दिया ताकि ये जो लाए नफी जिंस है इसका इसम क्या होता है? मंसूब होता है। एक सूरत में मंसूब होता है और दूसरी सूरत में मबनी होता है, तो मबनी भी मबनी अल फता किया, यानी वो जो नसब वाली सूरत थी उसी पर मबनी कर दिया ताकि इसकी जो मुअरब होने की सूरत है इस ला नफी जिंस के इसम की और इसके मबनी होने की सूरत है दोनों के अंदर मुआफकत हो जाए, दोनों एक दूसरे जैसी हो जाएं। एराब भी आता है तो कौन सा नसब, और मबनी भी बनाएंगे तो किस पर, उसी अलामत नसब पर। तो देखो दोनों में मुआफकत हो गई, दोनों एक जैसे हो गए, मबनी होने वाली हालत भी और मुअरब होने वाली हालत भी। इस पर फिर इश्काल हुआ कि भाई आपने कहा ला रजुला फी दार, ये मुतजमीन है मीन को, तो फिर वो मनसूब सूरत जो थी वो भी तो मीन को मुतजमीन है, जैसे ला गुलाम रजुलिन फी दार, तो ये भी तो असल में क्या है ला मीन गुलाम रजुलिन फी दार, तो लिहाजा इसको भी तो फिर मबनी होना चाहिए। लेकिन आपने कहा अगर तीनों शर्तें पूरी हों तो फिर वो मंसूब होगा, तो फिर तो उसको भी मबनी कहना चाहिए था, लेकिन आपने क्या कहा वो मंसूब, तो उसका भी जवाब दिया कि हां ये भी मुतजमिन है मीन के माना को, लेकिन यहां पर ये गुलाम की इजाफत हो रही है और ये इजाफत इसम के बड़े खासों में से है। तो जब इसके अंदर मीन का माना आ गया या यूं कहें इसके अंदर जब मीन छुप गया तो इसकी मुशाबहत किससे आ गई, हर्फ के साथ, और ये क्या तकाजा कर रहा है इसको क्या बना दो मबनी बना दो, लेकिन दूसरी तरफ इसकी इजाफत हो रही है और इजाफत इसम का बड़ा खासा है, ये मदलूल इसम को बाकायदा बदल देता है, तो लिहाजा जब इसम का बड़ा खासा इसके अंदर आ गया तो वो जो हर्फ के साथ मुशाबहत थी वो मुशाबहत क्या हो गई, कमजोर पड़ गई, वो जिहत कमजोर पड़ गई, तो लिहाजा इसलिए इसको फिर मबनी नहीं बनाया गया। अब आइए भाई आज के सबक पर, देखिए भाई किताब पर, फइन काना अयल मुस्नदु इलैही बादा दुखूलिहा मारिफतन बिंतिफाई शर्तिन नकारति औ मफसूलन बैनहू अय बैन ज़ालिकल मुस्नदि इलैही व बैन ला बिंतिफाई शर्तिल इत्तिसाली अला सबील मनअल खुलू। भाई पहले मतन देख लीजिए, मतन हम हल कर चुके हैं, बस सिर्फ तर्जमा देख लीजिए। फइन काना मारिफतन, अगर ला नफी जिंस का इसम मारिफा हो, और मफसूलन बैन हुआ बैन ला, और यह फसल किया गया हो उस इसम के दरमियान और ला के दरमियान, तो वजब रफ़ू व तकरीरू, तो इस सूरत में रफा भी वाजिब है और तकरार भी वाजिब है। भाई जैसे ला जैदुन फिदारी वला आमरुन, देखो यहां ये ला जैदुन फिदारी, यहां ये नकेरा नहीं है, तो नकेरा होने वाली शर्त क्या हो गई, मुंतफी हो गई, तो इस सूरत में रफा भी वाजिब है, ला जैदुन इस पर रफा पड़ेंगे, और नीस तकरारे ला भी होगा मा तकरारे इसम के, ला जैदुन फिदारी वाला आमरुन, और या दरमियान में फसल आ जाए जैसे ला फिदारी रजुलुन वला मरातुन, तो ये ला के बाद फिदार ये खबर मुकदम आ गई और जो इसम था वो मुअख्खर हो गया, तो इस सूरत में भी उस इसम पर रफा पड़ेंगे, ला फिदारी रजुलुन, और तकरार भी होगा वला इमरातुन। सूरत समझ में आ गई जी। अब इस सारे को शरा के साथ देखिए, कहते हैं फइन काना अयल मुस्नदु इलैही बादा दुखूलिहा मारिफतन जी, इन काना, काना के अंदर जमीर बतला रहे किसको राजे है, फइन का मतन में है फइन का ना मारिफतन, अगर वो मारिफा हो, तो साहिब जामी बतला रहे फइन का ना अयल मुस्नदु इलैही बादा दुखूलिहा मारिफतन, के काना के अंदर हुआ जमीर किसको राजे है, वो जो मुस्नद इलैह है ला के दाखिल होने के बाद, यानी ला का इसम मुराद है। फइन का ना अयल मुस्नदु इलैही बादा दुखूलिहा मारिफतन, तो अगर वो मुस्नद इलैह जो है ला के दाखिल होने के बाद मारिफा हो, भाई मारिफा मारिफा हो उसकी क्या सूरत है, आगे बा तस्वीरिया के साथ सूरत बतला रहे हैं, बिंतिफा इशर्तिन नकारती, नकारत का माना है नकेरा होना, बिंतिफा इशर्तिन नकारती, नकेरा होने की शर्त के मुंतफी होते हुए, नकेरा होने की शर्त क्या हो जाए, मुंतफी हो जाए, यानी नकेरा नहीं है बल्कि मारिफा है, तो मालूम हुआ ये दूसरी शर्त देखो मुंतफी हो जाए। औ मफसूलन बैनहू अय बैन ज़ालिकल मुस्नदि इलैही, भाई मतन में आया औ मफसूलन बैनहू व बैन ला, तो ये बैनहू की हा ज़मीर किसको राजे है, किस चीज और ला के दरमियान फसल होगा, बतलाया बैनहू अय बैन ज़ालिकल मुस्नदि इलैही, के बैनहू की हा ज़मीर भी किसको राजे है, वो जो मुस्नद इलैह है, यानी वो जो ला का इसम है। कहते औ मफसूलन बैनहू अय बैन ज़ालिकल मुस्नदि इलैही व बैन ला, और या ये के फसल किया गया हो उस मुस्नदि इलैह और ला के दरमियान, उनके दरमियान फसल किया गया हो, अब उसकी सूरत बतला रहे हैं बा तस्वीरिया के साथ, बिंतफा इशर्त इत्तेसाली, बाई सूरत के इत्तेसाल की शर्त मुंतफी हो जाए, बिंतफा इशर्त इत्तेसाली, बाई सूरत के इत्तेसाल की शर्त जो है वह मुंतफी हो जाए। इत्तेसाल की शर्त क्या हो जाए? जब इंतेसाल की शर्त मुंतफी हो जाएगी, इतेसाल नहीं होगा, तो दरमियान में मालूम हुआ क्या आ चुका है? फसल आ चुका है भाई, आला सबील मन अल खुलूवी, मन उल खुलूफ के तरीके पर। किस तरीके पर? मन उल खुलूफ के तरीके पर। खुलूफ वन का माना है खाली होना, खुलूफ खाली होना। तो याद रखो यहां पर औ आया, फइन काना मारिफतन औ मफसूलन बैनहु व बैनला, यह औ आया, और आओ आता है दो चीजों के दरमियान इनफिसाल और जुदाई को बयान करने के लिए कि यानी ये चीज है या ये चीज है। तो लिहाजा ये जो आओ आता है ये इनफिसाल के लिए आता है, और याद रखो दो चीजों के दरमियान इनफिसाल की तीन सूरतें हो सकती हैं, या तो वो इनफिसाल हकीकी होगा, या वो इनफिसाल जो है मानेअतुल जमा के तरीके पर होगा, या वो इनफिसाल मानेअतुल खुलूव के तरीके पर होगा। इनफिसाल हकीकी ये है कि दो चीजों में जुदाई बयान की गई, उनके दरमियान औ को लाया गया, और वो दो ऐसी चीजें हैं कि वो दोनों जमा भी नहीं हो सकती और दोनों उठ भी नहीं सकती, दोनों से वो चीज खाली भी नहीं हो सकती। मसलन मैं आपसे कहता हूं कि ये जो चीज है ये या तो इंसान है या ला इंसान है। देखो दरमियान में मैं औ ले आया, हाजा इंसान उन औ ला इंसान उन, ये औ में लाया, ये इंसान है या ला इंसान। अब ये जो इंसान और ला इंसान है इनके दरमियान इनफिसाल हकीकी है भाई, इनफिसाल हकीकी, ये दोनों जमा नहीं हो सकती। कोई दुनिया की कोई एक भी चीज ऐसी आपको नहीं मिलेगी जो इंसान भी हो और ला इंसान भी हो। अगर वो इंसान है तो फिर ला इंसान नहीं, और अगर वो ला इंसान है तो फिर वो इंसान नहीं है। तो ये दो चीज जो इंसान और ला इंसान है ये दोनों जमा भी नहीं हो सकते और दोनों उठ भी नहीं सकते। दुनिया की कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो इंसान भी ना हो और ला इंसान भी ना हो, दोनों में से एक जरूर होगी, दोनों में से एक जरूर होगी। तो यह है इंफिसाल हकीकी। किसे कहते हैं इंफिसाल हकीकी? कि दो ऐसी चीजें जो जमा भी नहीं हो सकती और उठ भी नहीं सकती। या दूसरी मिसाल ले लो, आप कहते हैं यह आदत या तो ताक है या जुफ्त। जुफ्त वो आदत जो जिसके जोड़े बन सकें, जो दो से तकसीम होता हो, जैसे दो चार छह आठ वगैरह। और ताक कहते हैं वो आदत जिसके जोड़े न बन सकें, जो दो पर तकसीम न होता हो, जैसे तीन पांच सात नौ वगैरह। भाई जैसे आप कहते हैं ये आदत या तो जुफ्त है या ताक है। अब देखो आदत या तो जुफ्त होगा या ताक, दोनों में से एक होगा, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते और दोनों उठ भी नहीं सकते। कोई आदत ऐसा भी नहीं है जो जुफ्त भी ना हो और ताक भी ना हो। तो ताक और जुफ्त के दरमियान इनफिसाल हकीकी है भाई। और कभी इनफिसाल जो होगा वो मानेअतुल जमा के तरीके पर होगा। मसलन मैं कहता हूं ये चीज या तो पत्थर है या इंसान है, ये चीज या तो पत्थर है या इंसान। अब देखो पत्थर और इंसान ये जमा नहीं हो सकते, मानेअतुल जमा, इनका जमा होना मना है भाई, ये जमा नहीं हो सकते। तो ये मानेअतुल जमा है। हां दोनों उठ सकते हैं, मसलन वो चीज ना पत्थर हो ना इंसान हो, बल्कि हो सकता है वो दरख्त हो। जब वो दरख्त है तो ना वो इंसान है और ना वो पत्थर है। तो इंसान और पत्थर जमा तो नहीं हो सकते लेकिन दोनों उठ सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? इनमें इनफिसाल कौन सा है? मानेअतुल जमा वाला है। और तीसरी सूरत है कि इनफिसाल जो है मानेअतुल खुलूफ के तरीके पर हो, यानी दो चीजें हैं, दो में से एक हो, दोनों उठ तो नहीं सकती, दोनों से खाली तो वो चीज नहीं हो सकती लेकिन दोनों जमा हो सकती हैं। जैसे मसलन मैं कहता हूं या तो जैद पानी में है या डूब नहीं रहा, या तो जैद पानी में है या डूब नहीं रहा। अब देखो ये दोनों उठ नहीं सकती, दोनों में से एक जरूर सादिक आएगा जैद पर। या तो जैद कहां होगा? पानी में, या डूब नहीं रहा। इन दो जैद की कोई हालत मुझे बता दो जो इन दो से खाली हो। इस जैद की कोई हालत इन दो से खाली नहीं हो सकती, या तो वो पानी में होगा या डूब नहीं रहा। हां ये दोनों जमा हो सकते हैं कि जैद पानी में भी हो और डूब भी ना रहा हो, बल्कि किश्ती में बैठा हो या तैर रहा हो। तो ये क्या है, मानेअतुल खुलूब है, इन दोनों से चीज खाली नहीं हो सकती, अलबत्ता ये दोनों जमा हो सकती हैं। तो यहां पर भी आया कि वो ला का इसम जो है या तो वो मारिफा होगा या मफसूल होगा, तो दरमियान में औ आया, तो अब ये औ कौन सा है? साहिब जामी बतला रहे हैं कि ये जो औ है ये मनउल खुलूब के तरीके पर है। ये दो शर्तें जो हैं किस तरीके पर हैं? मनउल खुलूब के तरीके पर हैं, यानी दोनों में से एक शर्त जरूर होनी चाहिए, फिर ही रफा भी वाजिब होगा और तकरार भी वाजिब होगा। तो दोनों में से एक जरूर होनी चाहिए, दोनों से खाली नहीं हो सकता, तो ये मनउल खुलूब के तरीके पर है। हां दोनों जमा हो सकती हैं, जमा होना इनका मना नहीं है। जमा होना कि एक इसम क्या हो लाए नफी जिंस का, मारिफा भी हो और दरमियान में फसल भी हो। मसल मैं कहता हूं लाफिदारी जैदुन वला अमरुन, लाफिदारी जैदुन वला अमरुन, तो देखो जैद ये ला का इसम है और ये मारिफा भी है और दरमियान में फिदार का फसल भी आ रहा है। तो ये माना है, कहते हैं अला सबील मन अल खुलूवी, कि ये दो जो शर्तें हैं ये मन उल खुलू के तरीके पर हैं। बाकी तीसरी शर्त, कहते हैं तीसरी शर्त चाहे हो या ना हो उससे कोई असर नहीं पड़ता। तो पहली दो शर्तों में से कोई एक भी मुंतफी हो जाए तो फिर इस सूरत में रफा भी वाजिब है और तकरार भी वाजिब है, और दोनों मुंतफी हो जाएं तो गोया कुल तीन सूरतें यहां बन गई। एक सूरत यह कि कभी सिर्फ पहली शर्त मुंतफी होगी, साथ नहीं मिला हुआ होगा, कभी दूसरी शर्त जो है वह मुंतफी होगी कि नकेरा नहीं होगा, और कभी दोनों होंगी कि फसल भी होगा और नकेरा भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई, तो कुल तीन सूरतें बन गई। फिर दोहराओ, कुल कितनी सूरतें हैं? तीन सूरतें। पहली दो शर्तों की बात चली है, कभी सिर्फ पहली शर्त मुंतफी होगी, कभी दूसरी शर्त मुंतफी होगी, और कभी दोनों शर्तें मुंतफी होंगी। तीन सूरतें बन गई, और हर सूरत के अंदर फिर वो या तो वो मुजाफ या मुशाबे मुजाफ होगा या नहीं होगा, उससे कोई असर नहीं पड़ता, चाहे मुजाफ या मुशाबे मुजाफ हो या ना हो। तो कुल छह सूरतें ये जिक्र करेंगे। कितनी सूरतें? छह सूरतें। फिर दोहराओ, एक सूरत क्या? सिर्फ पहली शर्त मुंतफी हो, दूसरी सूरत दूसरी शर्त मुंतफी हो, तीसरी सूरत दोनों शर्तें मुंतफी हो, पहली दोनों, और इन तीनों सूरतों के अंदर या तो वह मुजाफ या मुशाबे मुजाफ होगा या नहीं होगा। तो कुल कितनी सूरतें बन गई? छह सूरतें बन गई। भाई देखिए भाई किताब पर कहते हैं सवा उनका न मान तिफा इशर तिकौ नहीं मुजाफन औ मुशबहन बिही औ ला, बराबर है कि वो ये जो मुजाफ या मुशाबे मुजाफ होने की शर्त है उसके इंतफा के साथ हो या ना हो। तर्जमा समझ में आ रहा है? सवा उनका ना, बराबर है कि वो जो है मानतिफा इशरती कौनी ही मुजाफन औ मुशबहन बिही औ ला, कि वो जो तीसरी शर्त थी मुजाफ या मुशाबे मुजाफ होने वाली उसके इंतफा के साथ ये हो या ना हो, यानी वो शर्त मुंतफी हो या मुंतफी ना हो। भाई वही सित्तु सुअरिन, सित्ता का क्या माना? छे। सुअर स्वाद के साथ ये जमा है सूरत की। वही सित्तु सुअरिन, और ये छह सूरतें हैं। अब वो छह सूरतें बयान करेंगे, कौन सी छह सूरतें? इधर देखिए, एक सूरत क्या? पहली शर्त मुंतफी, दूसरी शर्त मुंतफी, और तीसरी सूरत दोनों मुंतफी, और फिर इनमें से हर एक के अंदर या तो वो मुजाफ या मुशाबे मुजाफ होगा या नहीं होगा। तो छह सूरतें बनती हैं। भाई देखिए, भाई कहते हैं नहु मिसाल के तौर पर ला जैदुन फिद्दारी वला अमरुन, ला जैदुन फिद्दारी वला अमरुन, यहां पहली दो शर्तों में से सिर्फ दूसरी शर्त मुंतफी है, पहली शर्त पूरी है, ला जैदुन साथ तो मिला हुआ है लेकिन नकेरा नहीं है बल्कि मारिफा है, तो दूसरी शर्त मुंतफी हो गई, और तीसरी शर्त उसका होना ना होना बराबर है, तो लिहाजा यहां पर जो जैद आया देखो यह ना मुजाफ है और ना मुशाबे मुजाफ, तो तीसरी शर्त मुंतफी है। अगली मिसाल देंगे उसमें तीसरी शर्त होगी। कौन सी सूरत आई है? ला जैदुन फिद्दारी वला अमरुन, पहली दो शर्तों में से कौन सी शर्त मुंतफी है? दूसरी शर्त मुंतफी है। और इसकी दो मिसालें जिक्र करेंगे जिसमें दूसरी शर्त मुंतफी होगी और दो मिसालों के अंदर एक के अंदर वो मुजाफ या मुशाबे मुजाफ होगा और एक में मुजाफ या मुशाबे मुजाफ नहीं होगा। तो इसके अंदर देखो ला जैदुन फिद्दारी वला अमरुन, ये दूसरी शर्त नकिरा वाली मुंतफी है और तीसरी शर्त भी मुंतफी है। अब अगली में तीसरी शर्त मौजूद होगी वला गुलामु जैदिन फिद्दारी वला अमरुन, वला गुलाम उजैदीन फिदारी वाला अमरुन। अब देखो गुलाम उजैदीन ये ला का इसम है और ये मारिफा है, तो नकेरा होने वाली दूसरी शर्त क्या हो गई मुंतफी, लेकिन तीसरी शर्त यहां मौजूद है कि ये मुजाफ हो रहा है गुलाम उजैदीन, तो इस सूरत में भी इस पर रफा आएगा ला गुलाम उजैदीन फिदारी वाला अमरुन। अगली में फसल आ गया, यानी सिर्फ पहली शर्त मुंतफी है वला फिदारी रजुलूं वलम रातुन, देखो ला के बाद फिर दार खबर आ गई और रजुलुन ये इसमें मुअख्खर है और ये पहली शर्त पूरी नहीं, मिला नहीं हुआ साथ, दूसरी शर्त नकेरा वाली पूरी है, रजुल क्या है नकेरा है, तवज्जो है, और तीसरी शर्त भी मुंतफी है, ये मुजाफ या मुशाबे मुजाफ भी नहीं है, तो इस सूरत में भी रफा पड़ेंगे लाफिदारी रजुलुन वलम रातुन। ये छह की छह सूरतों में रफा आएगा भाई। अगली मिसाल देखिए वलाफिदारी रजुलुन था ना, इसमें पहली शर्त भी मुंतफी थी और तीसरी शर्त भी मुंतफी। अब अगली मिसाल आएगी कि पहली शर्त तो मुंतफी है लेकिन तीसरी शर्त मुंतफी नहीं बल्कि मुजाफ या मुशाबे मुजाफ होगा, जैसे वला फिदारी गुलाम उरजुलिन वला मरातुन। अब देखो गुलाम उरजुलिन ये मुजाफ हो रहा है और फसल भी है भाई। अब आखिरी दो मिसालें, इसमें दोनों शर्तें मुंतफी हैं भाई, साथ भी नहीं मिला हुआ और नकेरा भी नहीं है, और फिर इसके अंदर यह कभी हो सकता है मुजाफ हो सकता है मुजाफ ना हो, तो दो मिसालें इसकी हो जाएंगी। देखिए भाई कहते हैं वला फिदारी जैदुन वला अमरुन, वला फिदारी जैदुन, देखो जैद ये या साथ भी नहीं मिला हुआ और नीज ये नकेरा भी नहीं, तो दोनों शर्तें पूरी और इजाफत यहां नहीं है, तो कहते हैं वला फिदारी जैदुन वला अमरुन। अगली मिसाल में देखो इजाफत भी होगी वला फिदारी गुलाम उजैदीन वला अमरुन, यहां पहली शर्त भी मुंतफी है ला फिदारी गुलाम उजैदीन, साथ भी नहीं मिला हुआ और नीस नकिरा भी नहीं है, गुलाम उजैदीन मारिफा है और तीसरी शर्त इजाफत वाली यहां पूरी है भाई। तो साहिब जामी ने छह मिसालें जिक्र फरमाई, फिर समझ लो भाई इन मिसालों को, फिर समझ लो हासिल कलाम, फिर सुनो। देखो यहां तीन सूरतें बनती हैं, साहिब काफिया ने क्या फरमाया कि अगर ला का इसम मारिफा हो या मफसूल हो तो रफा भी वाजिब है और तकरार भी वाजिब है, तो सिर्फ पहली दो शर्तों के इंतफा की बात कर रहे हैं साहिब काफिया। पहली शर्त क्या थी कि ला का इसम ला के साथ मिला हुआ हो, अगर मिला हुआ ना हो बल्कि फसल आ जाए, और दूसरी शर्त थी कि नकेरा हो तो नकेरा की नफी कर दें कि नकेरा ना हो, तो इन दो शर्तों के इंतफा की बात कर रहे हैं साहिब काफिया कि अगर ये दो शर्तें मुंतफी होंगी तो फिर रफा भी वाजिब और तकरार भी वाजिब है। याद रखो यहां इस एतबार से तीन सूरतें बनती हैं, ये पहली दो शर्तों के इंतफा के एतबार से, एक सूरत ये सिर्फ पहली शर्त मुंतफी हो, दूसरी शर्त मौजूद हो, तवज्जो है, तीसरी शर्त को आपने नहीं देखना, तो पहली शर्त मुंतफी है और दूसरी शर्त मौजूद है एक सूरत, दूसरी सूरत ये दूसरी शर्त मुंतफी है और पहली शर्त मौजूद है साथ मिला हुआ है, और तीसरी सूरत ये है कि दोनों शर्तें मुंतफी हैं, साथ भी नहीं मिला हुआ और नकेरा भी नहीं है बल्कि मारिफा, दोनों शर्तें इकट्ठी मुंतफी हो रही हैं, तो तीन सूरतें बनती हैं। तो साहिबे जामी इन तीनों की मिसाल जिक्र करना चाहते हैं, तो कुल कितनी मिसालें जिक्र करनी चाहिए थी, तीन मिसालें, एक मिसाल उसमें जिसमें सिर्फ पहली शर्त मुंतफी, दूसरी मिसाल जिसमें सिर्फ दूसरी शर्त मुंतफी, और तीसरी मिसाल जिसमें दोनों शर्तें मुंतफी। तो लेकिन साहिबे जामी हर एक की दो दो मिसालें जिक्र करेंगे, तवज्जो है, वो दो दो मिसालें क्यों जिक्र करेंगे वो मैं बयान करता हूं, पहले जरा देखिए फिर दोबारा मतन पर। ला जैदुन फिदारी वला अमरुन, इसके अंदर देखो जैद ला के साथ मिला हुआ है, पहली शर्त पूरी है लेकिन नकेरा वाली दूसरी शर्त मुंतफी है, जैद मारिफा आ गया, ला जैदुन फिदारी वला अमरुन, और इसी तरह वला गुलाम उजैदीन फिदारी वला अमरुन, यहां पर भी गुलाम उजैदीन ये ला के साथ मिला हुआ है तो पहली शर्त पूरी है, लेकिन ये नकेरा नहीं है बल्कि मारिफा है, दूसरी शर्त मुंतफी है। तो ये जो पहली दोनों मिसालें हैं इनमें दूसरी शर्त मुंतफी है, नकेरा वाली शर्त मुंतफी है। तो देखो ये दोनों मिसालें हैं जिसमें सिर्फ दूसरी शर्त मुंतफी है। फिर भाई दो मिसालें क्यों जिक्र की? वजह यह कि एक में ला का इसम सिर्फ मारिफा है और मुजाफ नहीं, और दूसरी में ला का इसम मारिफा भी है और मुजाफ भी है भाई, यानी बतलाना ये चाहते हैं तीसरी शर्त के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तवज्जो है, तो इसलिए दो मिसालें जिक्र की। एक में देखो ला जैदुन फिदारी, ये जैद ये मारिफा तो है मुजाफ नहीं है, और अगली में वला गुलाम उजैदीन फिदारी वला आमरुन, इसके अंदर ये मुजाफ हो रहा है। इसी तरह अगली दोनों मिसालों में फसल है लेकिन एक में है वला फिदारी रजुलुन, ये मुजाफ नहीं है, और अगली में है वला फिदारी गुलाम रजुलिन, ये मुजाफ है, यानी चाहे मुजाफ हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिरी दोनों मिसालों के अंदर भी इसी तरह है वला फिदारी जैदुन वला आमरुन, इसके अंदर फसल भी है और मारिफा भी है, दोनों दोनों शर्तें मुंतफी हैं, लेकिन एक वलाफिदारी जैदुन ये मुजाफ नहीं है, और अगली में है वलाफिदारी गुलाम उजैदीन वाला अमरुन, यहां पर ये मुजाफ है। तो फसल भी है और मारिफा भी है, और फिर तीसरी शर्त हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दो दो मिसालें सबकी जिक्र की। बात समझ में आ गई? तो इन तमाम छह की छह सूरतों में लाइन एफी जिन्स के इसम पर रफा पड़ेंगे और तकरार भी उसका होगा। आगे देखिए, कहते हैं वजबा फी जमी अहाद ही सूअरी सित रफू, और वाजिब है इन तमाम छह सूरतों के अंदर रफा। अलल इब्तिदाई, किस वजह से? इब्तिदा की वजह से भाई, बिनाबर इब्तिदा के। यह अला मैंने बतलाया था कभी तालील के लिए आता है, इल्लत बयान करता है। तो कहते हैं वजबा फी जमी अहादी सूअरी सित रफू अलल इब्तिदाई, तो इन तमाम छह सूरतों में रफा वाजिब है इब्तिदा की वजह से। यानी अब ये मुबतदा है, इब्तिदा इसके अंदर अमल कर रही है, अब ये ला का इसम है ही नहीं भाई। अब वजह जिक्र कर रहे हैं कि क्या वजह है, लाइन अफी जींस का इसम अगर मारिफा आ जाए वो क्यों उसमें अमल नहीं करता, या फसल आ जाए तो क्यों नहीं अमल करता। अब वो वजह बयान कर रहे हैं, कहते अम माफिल मारिफती, तो मारिफा जो है फल इम्तिनाई असरी लन्नाफियती लिल जिन्सी फीहा, फल इम्तिनाई असरी ला, इसलिए क्योंकि ला का असर मुमतनेअ है, ला असर नहीं कर सकता। कौन सा ला? अन्नाफियती लिल जिन्सी, जो जिन्स की नफी करने वाला है। फीहा आई फिल मारिफती, किसमें? देखो बतला दिया लन्नाफियती लिल जिन्सी, वो ला जो किसकी नफी करता है? जिन्स की नफी करता है, वो मारिफा में असर नहीं कर सकता। इल्लत समझ में आ रही है या नहीं भाई? ये ला नाम ही क्या है इसका? नाफिया लिल जिन्स है, ये ला किस लिए आता है? नफिये जिन्स के लिए आता है, और मारिफा वो तो जिन्स नहीं है, तो लिहाजा ये उसके अंदर अमल भी नहीं करेगा। ये माना है, कहते हैं अम माफिल मारिफती, तो मारिफा जो है उसके अंदर फल इम्तिनाई असरी लन्नाफियती लिल जिन्स फीहा, इस वजह से कि लाए नाफिया लिल जिन्स का असर मुमतनेअ है उस मारिफा में, वो उसमें अमल नहीं करता। भाई फसल वाली सूरत में क्यों नहीं अमल करता? वजह उसकी जिक्र करेंगे, वजह यह कि ला आमिले ज़ईफ है, ला आमिले ज़ईफ है, इसका इसम इसके साथ मिला हुआ हो फिर तो यह अमल करता है, लेकिन दरमियान में फसल आ जाए और इसम दूर चला जाए, वो दूर होने की वजह से अब उसमें अमल नहीं कर सकता। तो कहते हैं वह अम माफिल मफसूली, और बाकी मफसूल के अंदर यानी उसके अंदर क्यों ये रफा वाजिब है? कहते हैं फली ज़ुफी ला अनि तासीरी माल फसली, इसलिए क्योंकि ला जो है ज़ईफ है अनि तासीरी, इस बात से कि वो असर डाले माल फसली, किसके साथ? फसल जुदाई के साथ, जुदाई के साथ असर डालने से ला ज़ईफ है, वो असर नहीं डाल सकता जुदाई के साथ। तो कहते हैं वह अम्मा फिल मफसूली, तो वो जो मफसूल है उसमें यानी उसमें रफा वाजिब है फली ज़ुफी ला अनि तासीरी माल फसली, बवजह ला के ज़ईफ होने के, इस बात से कि वो असर डाले फसल के साथ। व तकरीर, और नीस क्या वाजिब है, रफा के साथ तकरीर भी वाजिब है। आई वजब तकरीर उस्मिहा, यानी ला के इसम का तकरार वाजिब है। तकरीर माने तकरार के है भाई, ला के इसम का तकरार वाजिब है। लेकिन मुतलकन ला बी आईनी ही, लेकिन मुतलकन तकरार वाजिब है, ला बी आईनी ही, वही बी आईनी ही उसी इसम का तकरार नहीं। भाई देखिए, ला जैदुन फिदारी, ला का इसम क्या है, मारिफा, तो इस सूरत में तकरार इसम होगा। ला जैदुन फिदारी वला आमरुन, अब देखो ये ला के इसम का तकरार हुआ, लेकिन क्या बेआई नहीं है वही पहला इसम दोबारा लाना पड़ा, या मुतलकन तक कोई भी इसम ले आओ, मुतलकन कोई भी इसम ले आओ लेकिन तकरार होना चाहिए। तो ला जैदुन फिदारी व ला जैदुन दोबारा उसी को नहीं लाएंगे, बल्कि मुतलकन कोई भी इसम ले आए। भाई बात समझ में आ गई, यह माना है लाकिन मुतलकन ला बेआईनी ही, लेकिन यह तकरार इसम मुतलकन होगा, बेआईनी ही वही पहला इसम, उसका तकरार नहीं होगा। अम्मा फिल मारिफती, अब वजह जिक्र करने लगे हैं कि भाई यह तकरार की क्या वजह है। रफा की वजह तो जिक्र कर दी, रफा की क्या वजह जिक्र की कि ला मारिफा में असर नहीं कर सकता, वो तो नफी जींस के लिए है, और नीस फसल की सूरत में अभी अमल नहीं कर सकता क्योंकि वो ला आमिल ज़ईफ है, वो करीब तो अमल कर सकता है, दूर अमल नहीं कर सकता। अब ये तकरार की क्या वजह है, जब फसल आ जाए तो या मारिफा आ जाए तो ये तकरार क्यों जरूरी है, तो वजह जिक्र करेंगे। इधर देखिए, पहले वजह समझ लीजिए, कहते इसलिए क्योंकि ये ला है नफी जींस के लिए, और जहां नफी जींस होगी वहां तअद्दुद होगा नफी के अंदर, तवज्जो से, जहां नफी जींस होगी वहां नफी में तअद्दुद होगा, क्या होगा, नफी में नफी जींस के साथ लाजिम है कि नफी में तअद्दुद होगा। मसलन मैंने कहा, इधर देखो, मैंने कहा ला रजुल फिदार, इस घर में कोई आदमी नहीं है। ला रजुल का क्या माना, ला जैदुन फिदारी वला अमरुन फिदारी वला खालिदुन फिदारी वला बकरुन फिदारी। देखो तादुद आ गया या नहीं, हर एक की नफी हो गई, तो जहां भी नफी जींस होगी वहां नफी के अंदर तादुद होगा। तो ये लाभ तो वजह है नफी जींस के लिए, और नफी जींस के अंदर क्या होता है, तादुद होता है, और अब यहां पर क्या आ गया, मारिफा आ गया, मारिफा के अंदर तो तअद्दुद नहीं है, लिहाजा तअद्दुद की कमी को पूरा करने के लिए एक और ला और उसका इसम आगे लाया जाएगा। अब तअद्दुद आ गया, अब क्या आ गया, तअद्दुद आ गया, तो ये ला है भी नफी में तअद्दुद के लिए, और यहां पर भी फिर तअद्दुद आ गया। भाई तो कहते हैं अम्मा फिल मारिफति लियकून कल इवजी, बाकी मारिफा के अंदर जो तकरार है, लियकून कल इवजी, ताकि ये तकरार जो है ये इवज की तरह हो जाए, अम्मा फिल तनकीरी, उस चीज से जो तनकीर के अंदर थी, यानी नकेरा लाने में थी, मिन माना नफील आहाद, यानी अफराद की नफी का माना, नकेरा लाने में क्या था, अफराद की नफी वाला माना था कि उसके अंदर अफराद की नफी थी, तो उसके इवज के तौर पर यहां पर भी क्या कर दिया गया, दो कम अज कम दो अफराद ले आए भाई, तकरार ले आए भाई, ताकि ये उसके लिए इवज की तरह हो जाए। भाई तर्जमा समझ में आया, देखो फिर सुनो, ये अम्मा फित तनकीर, ये मा मौसूला है और फित तनकीर ये उसका सिला है सबाता से मुतालिक होकर, और ये मिन माना नफील आहादी, ये बयान है मां का, क्योंकि अभी भी मां का पता नहीं चला कि ये कल इवजी अम्मा फित तनकीरी, ताकि ये इवज की तरह हो, अम्मा फित तनकीरी, उस चीज से जो नकेरा लाने में है, जो नकेरा लाने में जो चीज है उससे इवज की तरह हो जाए। भाई नकेरा लाने में क्या चीज है अभी भी पता नहीं चला, इबहाम था, तो मीन के साथ बयान कर दिया, मीन माना नफील आहादी, यानी अफराद की नफी का माना, तो ये मिन माना नफील अहाद किसका बयान है, अम्मा, ये जो मां है इस मां का बयान है, लिहाजा तर्जमा करते हुए इस मां को हटा दें और इसकी जगह ये माना नफील अहाद ले आएं। अब देखिए तर्जमा कैसा होगा, कहते हैं अम्मा फिल मारिफती, तो मारिफा के अंदर तकरार जो है, लियकून अकल इवजी, ताकि ये तकरार इवज की तरह हो, अम्मा फिल तनकीरी मिन माना नफील अहादी, वो जो नकेरा लाने में अफराद की नफी का माना होता है, ताकि उससे क्या हो जाए, इवज हो जाए, तो ये लाए नफी जिंस जो है यह जिंस की नफी के लिए आता है, और जहां भी जिंस की नफी हो वहां नफी के अंदर तकरार होता है, यानी अफराद की नफी होती है। तो जिंस की नफी के अंदर अफराद की नफी वाला माना होता है। जब मैंने कहा ला रजुला फिदारी, कोई आदमी इस घर में नहीं है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है? ला जैदुन फिदारी वला अमरुन फिदारी वला खालिदुन फिदारी वला बकरुन फिदारी, यानी हर हर फर्द की नफी हो गई। तो जहां भी नफी जिंस होगी वहां क्या होगा? वहां अफराद की नफी होगी। तो ये लाए नफी जिंस जो है ये जिंस की नफी के लिए आता है, और जहां जिंस की नफी हो वहां अफराद की नफी वाला माना पाया जाता है। तो जब ला का इसम मारिफा हुआ, तवज्जो है, तो जब ला का इसम मारिफा हुआ तो तकरार को वाजिब कर दिया गया बतौर इवज के, बतौर कि अगर नकेरा होता फिर तो अफराद की नफी थी, मारिफा आ गया है अब अफराद की नफी नहीं हो रही, तो लिहाजा कम अज कम एक और मारिफा ले आओ ताकि कम अज कम कितने अफराद की नफी हो जाए? दो अफराद की नफी हो जाए। तो देखो यहां पर भी तादुद आ गया, सूरत समझ में आ गई। वह आम माफी नकेरा थी, और बाकी नकेरा के अंदर भाई क्यों तकरार होता है? जैसे नकेरा लाए इसम लेकिन फसल कर दें, लाफिदारी रजुलन वलम रातुन, ये वलम रातुन, ये तकरार क्यों लाया गया, ये लाना क्यों जरूरी है? तो अब उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वह अम माफिन नकेरा थी, और वो जो तकरार वाजिब है नकेरा के अंदर लियकून मुताबिकन लिमा हुआ जवाब उन लहू, ताकि मुताबिक हो जाए, लिमा मां से मुराद है सवाल, ताकि मुताबिक हो जाए उस सवाल के हुआ जवाब उन लहू जिसका यह जवाब है, यानी एक सवाल का जवाब है भाई। ये जो नकेरा में तकरार लाते हैं वजह क्या है? ये एक सवाल का जवाब, और सवाल के अंदर तकरार मौजूद था। आप कहेंगे यहां तो कोई सवाल मौजूद नहीं, तो जवाब ये कि सवाल कभी मुहक्कक होगा, लफ्जों में मौजूद होगा, और कभी फर्ज कर लिया जाएगा, तकदीरन सवाल होगा, और उस सवाल के अंदर तो तकरार था। मसलन सवाल यह था अफिदारी रजुलन अमीम रातुन, अफिदारी रजुलन अमीम रातुन, तो देखो सवाल के अंदर तकरार है, तो जब सवाल के अंदर तकरार है तो जवाब भी सवाल के मुताबिक होना चाहिए, तो उसमें भी हम क्या लाएंगे? तकरार लाएंगे कि लाफिदारी रजुलन वला मरातुन। तो कहते हैं वह अम माफिन नकिरती, और जो नकिरा है उसके अंदर तकरार वाजिब है लियकून मुताबिकन, ताकि ये मुताबिक हो जाए लिमा हुआ जवाब उन लहू उस सवाल के जिसका ये जवाब है। भाई मैंने क्या बताया, मां से क्या मुराद है? सवाल, लेकिन इन्होंने तो बयान नहीं किया, तो मिन के साथ आगे बयान कर रहे हैं, मिन मिसल कौल साइली, यानी के किसी पूछने वाले के इस कौल के मिसल, किसी पूछने वाले के, ताकि ये मुताबिक हो जाए उस चीज के जिसका ये जवाब है। भाई कौन सी चीज है जिसका ये जवाब है? कहते हैं मिसल कौल साइली, जैसे कि किसी पूछने वाले का ये कौल, अफिदारी रजुलन अमीम रातुन, क्या इस घर में कोई मर्द है या औरत है? भाई तो इधर देखिए, मारिफा में क्या वजह जिक्र की, तकरार क्यों वाजिब है? वजह यह कि ला वजह है नफी जिंस के लिए, और यह किस पर दाखिल होता है? नकेरा पर दाखिल होता है, और नफे और नकेरा के अंदर अफराद की नफी वाला माना है, तो मारिफा के अंदर तो यह अफराद की नफी वाला माना नहीं, लिहाजा वहां पर भी तादुद पैदा करने के लिए इसला का तकरार और इसके इसम का तकरार लाजिम करार दिया गया। और नकेरा के अंदर तकरार क्यों जरूरी? कहते हैं वजह यह क्योंकि यह जवाब है एक सवाल मुकद्दर का, तो यह जवाब जो है वह सवाल के मुताबिक होना चाहिए। भाई आगे देखिए, वहादत तालील जार इन फिल मारिफत एजान, और यही तालील जो है मारिफा के अंदर भी जारी हो सकती है। तालील कहते हैं इल्लत बयान करना। नकेरा के अंदर तकरार क्यों है? क्योंकि यह सवाल मुकद्दर का जवाब है, और सवाल में तकरार था तो जवाब भी कैसा होना चाहिए? सवाल के मुताबिक होना चाहिए। कहते हैं यही इल्लत आप मारिफा में भी बयान कर सकते हैं। हमने तो मारिफा में और इल्लत बयान की कि मारिफा के अंदर भी ताकि तादुद आ जाए, क्या आ जाए? तादुद आ जाए, जैसे नकेरा के अंदर तादुद था। लेकिन यही जवाब आप मारिफा में भी दे सकते हैं कि मारिफा में क्यों तकरार जरूरी? क्योंकि एक सवाल मुकद्दर का जवाब है, और सवाल के अंदर तकरार था तो जवाब में भी क्या होना चाहिए? तकरार। जैसे आप यूं कहते हैं, कोई आपसे पूछता है अफिदारी जैदुन अम अमरुन, क्या घर में जैद है या अमर है? आप जवाब में कहते हैं लाफिदारी जैदुन वाला अमरुन। तो ये तालील, ये इल्लत जो है मारिफा में भी जारी हो सकती है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए भाई, मतन मतन देखिए, कहते हैं वनह वो कजियतू वला अबा हसनिन लहा मुतअव्वलुन। और इस जैसी मिसालें कजियतू वला अबा हसनिन लहा मुतअव्वलुन, इनमें तावील की गई है, इनके अंदर तावील की गई है भाई। यहां कजियतुन, कजिया कहते हैं ऐसा मामला जिसमें झगड़ा हो, जिसमें इख्तिलाफ हो, यानी इख्तिलाफी मामला, निजाई मामला या मसला। और यह खबर है मुब्तदा महजूफ है, ऐ हादिही कजियतुन, यह एक मामला है, वला अबा हसन इल्लाहा, और इसके लिए कोई अबुल हसन नहीं है। याद रखो ये अबुल हसन कुनियत है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की भाई, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने मलिका दिया था, सलाहियत दी थी, आप मुश्किल से मुश्किल मसला भी लम्हों में हल फरमा दिया करते थे। तो ये सहाबा का कौल है, सहाबा को कभी कोई मुश्किल मसला पेश आता और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां पर न होते तो वो कहते थे कजियतुम वला अबा हसन इल्लाहा, एक निजाई मसला है, एक निजाई मामला है और इसके लिए कोई अबुल हसन नहीं, यानी इसका कोई फैसला करने वाला नहीं है। तो यहां पर इश्काल यह होता है, इश्काल यह कि आपने अभी हमें बताया कि लाय नफी जींस का इसम जब मारिफा हो तो वह मरफू होगा और नीज वहां तकरार भी होगा, लेकिन यहां है वला अबा हसन इल्लाहा, यह अबा हसन यह कुनियत है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की, तो यह मारिफा है। तो ला का इसम मारिफा आया और ला का इसम मारिफा हो तो मरफू होता है, लेकिन यह तो है अबा हसन, यह तो मनसूब है। अबा किस में से है? अस्माए सिता मुकब्बरा में से है और इसका नसब अलिफ के साथ आता है और रफा वाव के साथ आता है और यहां पर अलिफ है भाई। तो इतराज क्या कि लाइन अफी जींस का इसम मारिफा हो तो रफा भी वाजिब और तकरार भी वाजिब, और ना यहां पर रफा है और ना तकरार है। इतराज समझ में आया? तो आपको साहिब काफिया जवाब देंगे कि इस जैसी मिसालों के अंदर तावील की गई है। दो दो जवाब जिक्र करेंगे साहिब जामी, तावील क्या की गई है। एक ये कि यहां पर मिसल का लफ्ज मुजाफ महजूफ निकाल लें, कजियतुन ये एक मामला है, वला मिसल अबी हसन लहा, और कोई अबुल हसन के मिसल, अबुल हसन जैसा नहीं है इसके लिए। तो मिसल का लफ्ज यहां मुजाफ महजूफ है, और आप जानते हैं कोई लफ्ज मारिफा की तरफ मुजाफ हो जाए तो वह मारिफा बन जाता है, लेकिन कुछ लफ्ज ऐसे हैं कि वो मारिफा की तरफ मुजाफ हो जाएं फिर भी वो मारिफा नहीं बनते, उनके अंदर इतना ज्यादा इबहाम होता है। जैसे मिसलुन है, शिबहुन है, अहदुन है, गैरुन है। तो मिसलुन, शिबहुन, गैरुन, अहदुन वगैरह ये कुछ लफ्ज हैं, ये मारिफा की तरफ भी मुजाफ हो जाएं फिर भी मारिफा नहीं बनते। मारिफा किसे कहते हैं? जो किसी मुअय्यन जात पर दलालत करे। और नकिरा किसे कहते हैं? जो किसी गैर मुअय्यन जात पर दलालत करे। मसलन देखो जैद, जैद एक मुअय्यन जात पर दलालत करता है, लेकिन मैं कहता हूं मिसलु जैदिन, जैद जैसा। कोई आपके जहन में मुतय्यन शख्स आया? नहीं। मिसलु जैदिन वो तो खालिद भी हो सकता है, वो तो बकर भी हो सकता है, वो तो अमर भी हो सकता है, वो तो कोई और फर्द भी हो सकता है। तो मिसलु जैदिन, इसमें मिसल की इजाफत हो रही है जैद मारिफा की तरफ, लेकिन फिर भी ये नकेरा है, ये किसी मुअय्यन जात पर दलालत नहीं कर रहा। इसी तरह मैं कहता हूं गैरु जैदिन, जैद के अलावा। अब देखो गैर लफ्ज इसकी इजाफत हो गई जैद मारिफा की तरफ, लेकिन फिर भी यह नकेरा का नकेरा है। गैरु जैदिन का क्या माना? जैद के अलावा, मतलब हर फर्द जो जैद के अलावा है वो इसके अंदर दाखिल हो गया। तो देखो इसमें उमूम है भाई, हालांकि मारिफा के अंदर तो उमूम नहीं होता, वो तो मुतय्यन अफराद पर दलालत करता है। या और देख लें शिबहु जैदिन, शिबहु जैदिन का भी वही माना जैद जैसा। तो जैद जैसा वो तो अमर भी हो सकता है, बकर भी हो सकता है, खालिद कोई भी हो सकता है। तो शिबहु जैदिन कहने से कोई मुतय्यन शख्स आपके जहन में नहीं आता। और इसी तरह अहद है, मसलन आपके 10 साथी हैं, आप दूसरे को बतलाते हैं जा अनी अहदुहुम, मेरे पास उनमें से कोई एक आया था। तो अहदुहुम, अहद की इजाफत हुम जमीर की तरफ हो रही है और जमीर मारिफा है, और मारिफा की तरफ जो लफ्ज मुजाफ हो जाए वो भी क्या बन जाता है? मारिफा। लेकिन यहां पर अहद का लफ्ज मारिफा नहीं बना। अहदुहुम उनमें से एक, कोई पता चल रहा है सुनने वाले को कि उन 10 में से कौन सा वाला एक मुराद है? कोई पता नहीं चल रहा। तो देखो ये मिसलुन, शिबहुन, गैरुन, अहदुन वगैरह जैसे अल्फाज ये मारिफा की तरफ मुजाफ हो जाए फिर भी मारिफा नहीं बनते। तो यहां पर भी मिसल का लफ मुजाफ महजूफ है, अई वला मिसल अबी हसन लहा। तो अब देखो शर्तें, देखो कितनी शर्तें थी, साथ मिला हुआ हो, वला मिसल अबी हसन लहा, ये मिसल का लफ ला के साथ मिला हुआ है। दूसरी शर्त क्या थी, नकेरा होना चाहिए, तो ये नकेरा भी है। और तीसरी शर्त क्या थी, मुजाफ या मुशाबे मुजाफ हो, ये मिसल का लफ्ज भी अबिल हसन की तरफ मुजाफ हो रहा है। तो तीनों शर्तें पूरी, और इस सूरत में ला का इसम क्या होता है, मनसूब होता है, इसलिए ला मिसला अबी हसनिन, ये मिसला क्या है, मनसूब। फिर इधर देखिए, फिर इस मिसल को हजफ कर दिया गया, और आगे जो इसका मुजाफिले था अबी हसन, इस अबी को वही मिसल वाला एराब दे दिया गया। जब किसी लफ्ज को हजफ करते हैं, दूसरे को उसका कायम मकाम करते हैं, तो उसको उसी का एराब दे देते हैं। तवज्जो है, मुजाफ को हजफ किया और मुजाफिले को उसका कायम मकाम कर दिया, तो उस पर वही एराब आएगा जो उस पर था। मिसल पर क्या था, नसब, उसको हजफ किया और अबा हसन को उसका कायम मकाम बनाया, तो इस पर भी क्या आ गया, नसब आ गया। यह तो एक जवाब है, यानी ये नकेरा ही है, मारिफा नहीं, मिसल का लफ्ज यहां मुजाफ महजूफ है। और दूसरा जवाब यह कि यहां हज़रत अली की कुनियत जिक्र है, लेकिन उनकी जात मुराद नहीं है, बल्कि उनका वसफ मुराद है, बल्कि उनका वस। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने बताया फैसला बड़ी जल्दी करते थे और बेहतरीन फैसला फरमाते थे, तो ये अबा हसन बमाने फैसल के है। फैसल का क्या माना, फैसला करने वाला। तो गोया कलाम यूं है, कजियतुन वला फैसला लहा, एक मामला है लेकिन इसका कोई फैसला करने वाला नहीं है। तो अबू हसन किस माना में हुआ, फैसल के माना में हुआ, और फैसल तो नकेरा है। फैसल क्या है, नकेरा है। तो ये फैसल यानी नकेरा के माना में है। तो अबा हसन लफ्जों के एतबार से अगर से मारिफा लग रहा है, लेकिन ये किस माना में है, नकेरा के माना में है। और जब नकेरा के माना में है, तो ये साथ भी मिला हुआ है, नकेरा भी है और मुजाफ भी है, तो क्या होगा, मंसूब ही होना चाहिए। बात समझ में आ गई जी। अब इस सारे को शरा के साथ देखिए, कहते हैं व नहवु कजियतुन ऐ हादिही कजियतुन। देखो मतन में सिर्फ आया था कजियतुन, आगे साहिब जामी फरमा रहे ऐ हादिही कजियतुन, क्या बतलाना चाहते हैं कि यह कजियतुन खबर है और इसका मुब्तदा हाजिही महजूफ है। ऐहादिही कजियतुन, ये एक मामला है, वला अबा हसन लहा, और इसके लिए कोई फैसला करने वाला नहीं है। ऐ लिहादिही कजियत, हाज अमीर का मर्जिअ बतला रहे हैं, वला अबा हसन लहा ऐ लिहादिही कजियत, और कोई अबू हसन नहीं है इस मामले के लिए। कहते हैं हादा जवाब दखल मुकद्दर अला कौलिही व इनकान मारिफतं वजबर रफ व तकरीर। कहते हैं हादा जवाब दखल मुकद्दरीन, ये एक दखल मुकद्दर का जवाब है। किसका, दखल मुकद्दर। याद रखो दखल का माना है खलल और खराबी। दखल का क्या माना, खलल और खराबी, और यहां मुराद है एतराज भाई। ये एतराज है, मुकद्दर का जवाब है जो इबारत पर होता है। इबारत क्या थी, साहिब काफिया ने क्या कहा था, वह इनकान मारिफतं वजबर रफ़ व तकरीरु, अगर ला का इसाम मारिफा हो, वजबर रफ़ व तकरीरु, तो रफा भी वाजिब और तकरार भी वाजिब। तो इस पर इश्काल होता है, वला अबा हसन इल्लाहा, इसके अंदर ये ला का इसम मारिफा है और ना इस पर रफा आया है और ना इसका तकरार है भाई। तो कहते हैं हादा जवाब दखल मुकद्दर अला कौलिही, ये के एतराज मुकद्दर का जवाब है मातिन के इस कौल पर। ये जो मातिन ने कहा था वह इन कान मारिफतं वजबर रफ़ व तकरीर, इस पर ये के दखल मुकद्दर का जवाब है। फइन नस्म लाफी ही मारिफतुन, इसलिए क्योंकि इस जुमले के अंदर ये जो ला अबा हसन लहा है, इसके अंदर ला का इसम जो है वो मारिफा है। लिअन्न अबा हसन कुनियत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, कुनियत इसमें याद रखना ये काफ पर जम्मा है, नून साकिन है और या पर फतहा है, मुशद्दद नहीं। उर्दू में जो राइज है कुनियत कहते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं, अमूमन कुनियत बोलते हैं। अरबी से आया है लेकिन उर्दू में इसी तरह राइज हो गया है, लेकिन अरबी के अंदर ये या मुशद्दद नहीं है, कुनियतुन। याद रखो कुनियत किसी शख्स का वो नाम जिसके शुरू में अब, उम, इबन, बिंत, आख और इस जैसे लफ्ज आ जाए। तवज्जो है, अबू जैदीन, देखो शुरू में अब आ रहा है, उम्मु जैदीन, बिन्तु जैदीन, अखू जैदीन, तो ये सब क्या है? कुनियत। ये आलम के दर्जे में ही होता है, ये उस मुअय्यन शख्स पर दलालत करता है, और अरब ये कुनियत बहुत इस्तेमाल करते थे, और ये मुअज्जज लोगों की अलामत थी। किसके? मुअज्जज लोगों के इजहार अजमत और शान के लिए कुनियत वो इस्तेमाल करते थे। तो कहते हैं ली अन्ना अबा हसनिन कुनियत अली रजी अल्लाह अनहु, इसलिए क्योंकि अबा हसन जो है यह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत है। वला रफा फी ही वला तकरीरा, और ना तो इसके अंदर रफा है और ना तकरार है। बल हुआ मनसूब उन गैर मुकर्ररिन, बल्कि यह मनसूब है और गैर मुकर्रर है। इसको तो मरफू और मुकर्रर होना चाहिए था, लेकिन यह मनसूब है और गैर मुकर्रर है, इसमें तकरार नहीं है। फअजाबत, तो साहिब काफिया ने इसका जवाब दिया, बिअन्नहु मुतअव्वलुन बिन्नकिरति, कि इसकी तावील की गई है नकेरा के साथ। इम्मा बितकदीर मिसली, या तो मिसल की तकदीर के साथ, कि यहां मिसल का लफ्ज मुजाफ महजूफ है। तो कहते हैं इम्मा बितकदीर मिसली, या तो मिसल की तकदीर के साथ। ऐ वला मिसल अबी हसन लहा, यानी इस तकदीर के साथ है कलाम। ला मिसल अबी हसन लहा फइन न मिसलन, इसलिए क्योंकि मिसलन जो है लितवगुली ही फिल इबहाम। तवहुल का माना समझ लो भाई, तवहुल फी शय का माना है किसी चीज के अंदर दाखिल हो जाना, दूर तक उसके अंदर चले जाना, इसको क्या कहते हैं? तवहुल। या इसी तरह कहते हैं तवग्गला फिल इल्मी, जैदुन तवग्गला फिल इल्मी, यानी जैद इलम के अंदर खूब दाखिल हो गया, यानी उसने इलम में खूब तरक्की कर ली, या यूं कहें उसने इलम में खूब मजबूती और पुख्तगी हासिल कर ली, उसका इलम बड़ा मजबूत और पुख्ता है। तो यहां पर तवग्गुल का माना कर लें मजबूती और पुख्तगी। फइन्ना मिसलन, कहते हैं इसलिए क्योंकि ये जो मिसल का लफ्ज है, लितवग्गुली ही फिल इबहामी, इस वजह से कि इबहाम के अंदर ये पुख्ता है और मजबूत है, इबहाम के अंदर पुख्ता और मजबूत होने की वजह से, ला यतअर्रफु बिल इजाफति इलल मारिफति, ये मारिफा नहीं होता मारिफा की तरफ इजाफत से, ये मारिफा की तरफ इजाफत से भी मारिफा नहीं होता। फिर तर्जमा देख लीजिए, फइन न मिसलन, ये मिसलन से मिसल का लफ्ज मुराद है, फइन न मिसलन लितवग्गुली ही फिल इबहामी, इसलिए क्योंकि मिसल का जो लफ्ज है इबहाम के अंदर पुख्ता और मजबूत होने की वजह से, ला यतअर्रफु बिल इजाफति इलल मारिफति, ये मारिफा नहीं होता मारिफा की तरफ इजाफत से भी, ये एक तावील थी। और बितावील ही बिफैसलिन बैन अल हक वल बातिली, क्या कहा था? मुतअव्वलुन बिन नकिरती, इम्मा बितकदीर मिसली, और बितावील ही बिफैसलिन बैन अल हक वल बातिली, या इसकी तावील की गई है बिफैसलिन बैन अल हक वल बातिली, हक और बातिल के दरमियान फैसला करने वाले के साथ, हक और बातिल के दरमियान फैसला करने वाले के साथ। लिश्तिहार ही रजी अल्लाह ताला अन्हु बिहाद ही सिफती, इश्तिहार का माना मशहूर होना, लिश्तिहार ही रजी अल्लाह ताला अन्हु, इस वजह से कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शोहरत थी बिहाद ही सिफती, इस सिफत के साथ, इस सिफत के साथ वो मशहूर थे। तो यहां जिक्र तो कुनियत है लेकिन उनकी सिफत मुराद है। फकअन्नहु कीला, तो गोया के यूं कहा गया, ला फैसला लहा, एक मामला है लेकिन कोई उसका फैसला करने वाला नहीं है। कहते हैं वयुकव्वी हादा तावीला इरादु हसन बिहस्फिल लाम, भाई याद रखो कुनियत है हज़रत अली की अबुल हसन, अबुल हसन अलिफ्लाम है, अलिफ्लाम है अल हसन पर, लेकिन यहां पर हसन पर अलिफ्लाम नहीं लाया गया, कजियतू वला अबा हसनिन लाहा, तो अलिफ्लाम को हटाया तो हसनिन पर क्या आ गई? तनवीन आ गई। क्या आ गई? तनवीन आ गई अबा हसनिन। और याद रखो ये तनवीन मुख्तलिफ मानी के लिए अरबी में लाते हैं, कभी कभार तनवीन लाते हैं ताजीम के लिए, किसी चीज की अजमत बयान करने के लिए, किसी चीज को अजीम बतलाने के लिए। मसलन मैं कहता हूं इंदी मालुन, इंदी मालून। अब ये मालून ये देखो मुबतदा है, मुबतदा मुअखर, इंदी खबर है मुकदम और मालून मुबतदा मुअखर, और मैं इसको नखेरा लाया, इस पर तनवीन लाया किस लिए? तअज़ीम के लिए। इंदी मालून अज़ीमुन, मेरे पास बहुत बड़ा माल है, बहुत ज्यादा माल है। और कभी कभार यह तनवीन तहकीर के लिए लाई जाती है, इंदी शैउन ऐ शैउन हकीरुन, मेरे पास एक हकीर सी चीज है। तो यह मौका महल के मुताबिक होता है, एक लफ्ज़ पे तनवीन आएगी, वहां उलमा बलागत उसमें गौर करते हैं और फिर बतलाते हैं कि यहां पर तनवीन इस माना के लिए है, यहां पर तनवीन इस माना के लिए लाई गई है। जैसे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं रिजवानुम मिनल्लाह अकबर, रिजवानुम ये नकेरा लाया गया, इस पर तनवीन लाई गई, तवज्जो है, तनवीन लाई गई। यहां ये जो तनवीन है ये तकलील के लिए है, किस लिए है? यहां तनवीन तकलील के लिए है, और माना यह है थोड़ी सी भी रजामंदी अल्लाह की तरफ से मिल जाए यह बहुत बड़ी चीज है। बात समझ में आ गई? तो यह तनवीन मुख्तलिफ मानी के लिए आती है। अब साहिब एक जामी आपको बतलाएंगे कि अबा हसनी से अलिफ लाम को गिराकर इस पर तनवीन लाई गई, और यह तनवीन तनकीर के लिए है, इसको नकेरा बनाने के लिए है। तनवीन मुख्तलिफ मानी के लिए आती है ना, कभी तकसीर के लिए आती है यानी कसरत बयान करने के लिए, कभी तकलील के लिए आती है यानी किल्लत बयान करने के लिए, कभी ताजीम के लिए आती है यानी अजमत बयान करने के लिए, कभी तहकीर के लिए आई है यानी हकीर बयान करने के लिए, और कभी कभार तनवीन किस लिए आती है? तनकीर के लिए, एक लफ्ज को नकेरा बनाने के लिए। तनवीन और भी मानी के लिए आती है, लेकिन यहां जो जाहिर यही है कि अबा हसनीन पर जो तनवीन लाई गई वो तनकीर के लिए है, इसको नकेरा बनाने के लिए। वैसे अबुल हसन कुनियत किसके? हजरत अली की, और ये मारिफा है नकेरा है? मारिफा है। ये हजरत अली की कुनियत है, और कुनियत बोलते ही वो शख्स जहन में आता है, तो ये एक मुअय्यन ज़ात पर दलालत कर रही है, तो ये क्या है? मारिफा, मारिफा। लेकिन इसे अलिफ लाम खत्म करके इस पर तनवीन लाई गई, किस लिए? नकेरा बनाने के लिए, यह बयान करने के लिए कि हजरत अली से मुराद नहीं है बल्कि उनकी सिफत जो है वो यहां मुराद है। बात भी समझ में आई कि नहीं? दूसरी तावील क्या की थी कि यहां हजरत अली खुद की जात मुराद नहीं है बल्कि उनका वस्फ मशहूर यहां मुराद है, और यह तनवीन से भी उसकी ताइद होती है। यह तनवीन भी यहां जाहिर यही है, किस लिए है? तनकीर के लिए है, नकेरा बनाने के लिए है, यह बतलाने के लिए कि यहां जो अबू हसन कहा गया इसे हजरत अली खुद मुराद नहीं है बल्कि यह आम है, फैसला करने वाला मुराद है, जो भी हक और बातिल के दरमियान अच्छा फैसला करने वाला हो वो मुराद है। कजियतुन एक मामला है, वला अबा हसन इल्ला, लेकिन इसके लिए कोई अच्छा फैसला करने वाला नहीं है। अब बात समझ में आ गई? तो अच्छा फैसला करने वाला, देखो ये तो नाम है, जो भी अच्छा फैसला करेगा वो इसके अंदर दाखिल है। तो ये तनवीन किस लिए है? जाहिर यही है कि ये तनकीर के लिए है। तो कहते हैं वयुकव्वी हाजत तावीला, और तकवीयत देता है, कुवत देता है हाजत तावीला, इस तावील को, ये जो दूसरी तावील की, इस तावील को कुवत देता है इरादु हसनिन बिहस्फिल्लामी। इराद का माना लाना, हसन के लफ्ज को लाना बिहस्फिल्लामी, लाम के हजफ के साथ। ये जो हसन के लफ्ज को लाम के हजफ के साथ लाया गया है, इस पर अलिफ लाम को नहीं लाया गया, तो ये हसन को हस्फ लाम के साथ लाना ये इस दूसरी तावील को कुव्वत देता है, इससे ये दूसरी तावील की ताईद होती है। भाई तो कहते हैं युवा युकव्वी हादा तावील इराद हसनिन बिहस्फ लामी, और कुव्वत देता है इस तावील को इराद हसनिन, हसन के लफ्ज को लाना बिहस्फ लामी, लाम के हजफ के साथ। लिअन्ना ज़ाहिरा, क्योंकि जाहिर यही है कि अन्ना तनवीनहु लितनकीरी, कि इसकी जो तनवीन है वो तनकीर के लिए है, नकेरा बनाने के लिए है। भाई बात समझ में आ गई? तो हासिल कलाम क्या हुआ कि कजियतुं वला अबा हसन लहा, इस पर इश्काल होता था कि ला का इसम मारिफा है, लेकिन ना तो यहां इस पर रफा आया है और ना इसमें तकरार है, तो दो जवाब जिक्र कर दिए। एक जवाब यह कि यहां मिसल का लफ्ज मुजाफ महजूफ है, और मिसल का लफ्ज जब मुजाफ महजूफ है तो अब यह मारिफा नहीं नकेरा है, जब नकेरा है तो उसको हजफ कर लिया और अबा हसन को उसका कायम मकाम बना दिया, तो यह भी उसी के दर्जे में है, वो नकेरा था, यह भी क्या है? नकेरा है। तो यहां तीनों शर्तें पूरी हैं, साथ भी मिला हुआ है, नकेरा भी है और मुजाफ भी है, और इस सूरत में मंसूब होता है, इसीलिए अबा हसनीन मंसूब लाया गया। और दूसरी तावील यह कि अबू हसन किस माना में है? फैसल के माने में है, फैसल बैन अल हक वल बातिल, वो जो फैसला करने वाला हक और बातिल के दरमियान। तो जब ये फैसल के माने में है तो ये मारिफा नहीं बल्कि ये नकेरा है। जब ये नकेरा है तो फिर अब तीनों शर्तें पूरी हैं, साथ भी मिला हुआ है, नकेरा भी है और मुजाफ भी है, लिहाजा इसको क्या होना चाहिए, मंसूब होना चाहिए। तो यह मंसूब है। बात समझ में आ गई भाई। यहां हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र आया, कज़ियतुन वला अबा हसनिल्लाहा, कि एक मामला है और कोई इसका फैसला करने वाला नहीं। मैंने बताया हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने अजीब मलका नसीब फरमाया था कि मुश्किल से मुश्किल मसला भी आप चुटकियों में हल फरमा देते थे। चुनांचे रिवायात में आता है कि एक मरतबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज के लिए मस्जिद की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में एक यहूदी मिला और उस यहूदी ने सवाल किया कि हजरत ये बताइए कौन से जानवर बच्चे देते हैं और कौन से जानवर अंडे देते हैं। तो मकसद यह था कि हजरत अली तफसील बयान करना शुरू कर देंगे कि गाय बच्चे देती है, बकरी बच्चे देती है, मुर्गी अंडे देती है वगैरह, एक एक जानवर की तफसील बयान करेंगे और इसमें देर लग जाएगी और जब तक इनकी जमात निकल जाएगी। तो शरारत के इरादे से उसने सवाल किया रास्ते में कि हजरत बताइए कौन से जानवर बच्चे देते हैं और कौन से जानवर अंडे देते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि भाई जिन जानवरों के कान बाहर हैं वो बच्चे देते हैं और जिनके कान अंदर हैं वो अंडे देते हैं, और ये फरमाया और चल पड़े भाई। अजीब जवाब दिया। आप भी गौर कर लें, जिन जानवरों के कान हमें नजर आते हैं वो बच्चे देते हैं, जैसे गाय के कान हमें नजर आते हैं वो बच्चे देती है, भैंस के कान हमें नजर आते हैं वो बच्चे देती है, बिल्ली के कान हमें नजर आते हैं वो बच्चे देती है, बकरी के कान हमें नजर आते हैं वो बच्चे देती है, और जिन जानवरों के कान हमें नजर नहीं आते वो अंडे देते हैं, जैसे मुर्गी के कान नजर नहीं आते वो अंडे देती है, बत्तख के कान नजर नहीं आते वो अंडे देती है, और इसी तरह कबूतर चिड़िया वगैरह देख लें या इसी तरह ये छिपकली वगैरह देख लें, ये सब क्या है, इनके कान नजर नहीं आते तो ये अंडे देते हैं भाई। अजीब जवाब दिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी तरह एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और उसने सवाल किया कि हजरत इंसान को अल्लाह ने कितना इख्तियार दिया है और कितना वो मजबूर है। वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने खड़ा था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे फरमाया अपनी एक टांग उठाओ। उन्होंने खड़े खड़े एक टांग जमीन से उठा ली। फिर फरमाया दूसरी भी टांग उठाओ। उसने कहा हजरत दूसरी टांग तो मैं नहीं उठा सकता, खड़े खड़े इंसान तो एक वक्त में एक ही टांग उठा सकता है। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाने लगे बस इसी तरह है, कुछ इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया है और कुछ बातों के अंदर इख्तियार नहीं दिया भाई। इसी तरह भाई एक मरतबा हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कद कुछ निस्बतन कुछ छोटा था, तो एक तरफ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु चल रहे हैं और दूसरी तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, और दरमियान में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने चलते चलते बतौर मजाह के फरमाया कि ए अली, आप हम दोनों के दरमियान इसी तरह हैं जैसे लना का नून होता है। लना लफ्ज आप देखें भाई, लना लिखें तो एक तरफ लाम लंबा है, दूसरी तरफ अलिफ लंबा है, दरमियान में नून का दंदाना छोटा है, तो यानी आप हमारे दरमियान लना के नून की तरह हैं। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन जवाब दिया और अगर मैं दरमियान से निकल गया तो आप दोनों ला हो जाएंगे, आप दोनों ला हो जाएंगे। ला ला का क्या माना, नहीं है, नफी है, यानी वजूद ही ना रहेगा। तो अजीब जवाब दिया। इसी तरह भाई एक मरतबा सहाबा के साथ बैठकर हुजूर अलैहिस्सलाम खजूरें खा रहे थे। हुजूर के साथ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे, खजूरें खा रहे हैं और हर शख्स खजूरें खा रहा है, अपने सामने घुटलियां डालता जा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हजरत अली थे, हुजूर अलैहिस्सलाम घुटलियां अपने सामने डालने के बजाय वही हजरत अली की घुटलियों में डालते जा रहे हैं। तो हुजूर के सामने अब कोई घुटली नहीं है और हजरत अली के सामने घुटलियां डाल रहे हैं। तो खाते खाते हुजूर अलैहिस्सलाम ने बतौर मजाक के फरमाया भाई देखो किसने सबसे ज्यादा खजूरें खाई हैं। अब हजरत अली रजी अल्लाह तआला की घुटनियां तो दुगनी थी भाई, तो हजरत अली फौरन बोल उठे और ये भी देखो घुटनियों समेत कौन खा रहा है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए भाई, तो बड़े हाजिर जवाब थे और अजीब अल्लाह ने जहानत दी थी। इसी तरह हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने में एक मरतबा एक औरत पर जिना का इल्जाम साबित हो गया, वो शादीशुदा थी, उसने इकरार कर लिया जिना का, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने उसे रजम करने का हुक्म दिया और वह हामिला थी, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फौरन कहा कि हजरत कि औरत का तो कसूर है, इसको तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसके जो पेट में हमल है उसका तो कोई कसूर नहीं, रजम से तो वो भी हलाक हो जाएगा। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन चौंक उठे और आपने वो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, लौला अली युन लहलक उमर, अगर अली ना होते तो आज तो उमर हलाक ही हो गया था, मेरी वजह से एक जान चली जाती, क्यामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब देता भाई। चुनाचे फिर उस औरत को मोहलत दी गई भाई। इसी तरह भाई हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के साथ आप करम अल्लाह वजहू पढ़ते हैं, और सहाबा के साथ ये लफ्ज नहीं मिलेगा, लेकिन हजरत अली के नाम के साथ करम अल्लाह वजहू पढ़ते हैं। वजह इसकी यह है कि हजरत अली के जमाने में खवारिज का फितना था और हजरत अली मस्जिद नबवी के अंदर बयान फरमा रहे होते, जुम्मे वगैरह की तकरीर या कोई और बात सहाबा से कर रहे होते थे, अमीरुल मोमिनीन थे, तो ये खवारिज भी वहां मौजूद होते और ये दरमियान में खड़े हो जाते और नारा लगाते सव्वदल्लाहु वजहका, अल्लाह आपके चेहरे को स्याह करे। देखो खलीफा राशिद हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो और एक इशारे पर गर्दनें उड़ाई जा सकती हैं, लेकिन ये पैगंबर के शागिर्द थे, आप उनको कोई तकलीफ नहीं देते थे भाई। तो उसके मुकाबले में फिर सहाबा जो है वो कहते थे करम अल्लाह वजहू, अल्लाह आपके चेहरे को मुकर्रम फरमाए, मुअज्जज फरमाए, तो इसलिए हजरत अली के नाम के साथ ये करम अल्लाह वजहू मशहूर है। इसी तरह हजरत अली के नाम के साथ कर्रार का लफ्ज आता है, हजरत अली हैदर कर्रार, तो ये कर्र या किर्रू इसका माना है पलटकर हमला करना, पलटकर हमला करना। तो ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जंग का कोई खास तरीका था, वो पलट पलट कर हमले करते थे, इसलिए उनको क्या कहते हैं हैदर कर्रार। या कर्र या किर्रू का एक माना है किसी पर टूट पड़ना, टूट पड़ना, तो शायद इनकी हजरत अली की जंग का तरीका यह हो कि वो दुश्मन पर टूट पड़ते थे भाई, यानी उसको मौका ही नहीं देते थे संभलने का, ताबड़तोड़ हमले मुसलसल करते कि बिल आखिर उसको खत्म कर देते थे भाई। बात समझ में आ गई, तो इसलिए उनको हैदर कर्रार कहते हैं। तो या तो वो पलट पलट कर हमला करते थे या टूट पड़ते थे, उसको संभलने का मौका ही नहीं देते थे। और याद रखो सहाबा के दरमियान आपस में बड़ी मोहब्बत थी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु चौथे खलीफाए राशिद हैं भाई, और बाकी खुलफाए राशिदीन वगैरह सहाबा से बड़ी मोहब्बत थी। शिया अजीब लोग हैं भाई, सहाबा को बुरा भला कहते हैं, सहाबा को बुरा भला कहते हैं, अल्लाह इनको हिदायत नसीब फरमाए। हालांकि हजरत अली की सहाबा के साथ इतनी मोहब्बत जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, और शिया कहते हैं कि हजरत अली जो खुलफाए राशिदीन के पीछे साल हा साल तक नमाजें पढ़ते रहे, ये वो तकिया करते थे। तकिया कहते हैं दिल में कुछ और हो और जाहिर में कुछ और करना, ही नहीं को झूठ बोलना और दिखलावे के लिए कोई अमल करना। तो ये तो हजरत अली की शान, हजरत अली वो तो हैदर कर्रार हैं भाई, एक आम बहादुर आदमी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो दुश्मनों और मुखालिफों के साथ मिलता रहे और दुश्मनी दिल में रखे, नहीं भाई, बहादुर आदमी कभी दिल के अंदर बात नहीं रखता, वो खुलकर बात करता है हर बार। तो ये हजरत अली पर इल्जाम है, हजरत अली को तो खुलफाए राशिदीन से कितनी मोहब्बत थी आप अंदाजा लगाइए, कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी एक बेटी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में दी थी। देखो बेटी किसी को देना, दुश्मन को तो कोई बेटी नहीं दे सकता, तो हजरत अली ने अपनी एक बेटी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में दी थी भाई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला हालांकि हजरत अली से उमर में बड़े हैं भाई, फिर भी उनको एक बेटी दी, इतनी ज्यादा मोहब्बत थी भाई, इतनी ज्यादा। और इसी तरह हजरत अली के हजरत फातिमा से तो दो बेटे हैं, हजरत हसन और हुसैन, लेकिन इसके अलावा इनके बेटे जो हैं उनमें से एक बेटे का नाम उन्होंने अबू बकर रखा, एक बेटे का नाम उन्होंने उमर रखा, एक बेटे का नाम उन्होंने उस्मान रखा भाई, यानी खुलफाए राशिदीन के नामों पर अपने बच्चों के नाम रखे। और ये इंतहाई मोहब्बत की अलामत है, किसी से इंतहाई मोहब्बत हो तब ही इंसान उसके नाम पर अपने बच्चों के नाम रखता है। लेकिन शिया कहते हैं कि ये जो नाम अजीब जवाब देते हैं, इंसान हैरान होता है, अल्लाह इनको हिदायत दे भाई, कि ये हजरत अली ने जो नाम रखे थे अपने बच्चों के, अबू बकर, उमर और उस्मान, ये इन तीन खुलफाए राशिदीन की निस्बत से नहीं रखे थे, ये किसी और की निस्बत से रखे थे। अब ये अजीब बात है, यानी इन तीन से तो उनकी दुश्मनी थी भाई। जब किसी से दुश्मनी हो तो उस जैसा नाम भी इंसान पसंद नहीं करता अपने बच्चों के लिए, किसी और की निस्बत से भी इंसान नहीं रख सकता अपने बच्चों का नाम अपने दुश्मनों की तरह। तो ये वैसे ही बातें फैलाई गई, हत्ता के रिवायात में आता है हज़रत अली रजी अल्लाह तआला हो एक मर्तबा बैठे हुए थे और आपने एक पुराना बोसीदा सा फटा हुआ कंबल ओढ़ा हुआ था। हज़रत अबू मरियम रहिमहुल्लाह हज़रत अली के साथी थे भाई, तो वो तशरीफ लाए, दोस्त थे, खादिम थे, वो तशरीफ लाए तो हज़रत अली रजी अल्लाह तआला को देखा बैठे हुए और फटा हुआ कंबल ओढ़ा हुआ है। और ये जमाना था हजरत अली की खिलाफत का, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अमीरुल मोमिनीन है इस वक्त भाई, बेतकल्लुफ साथी थे, तो कहने लगे कि हजरत ये पुराना फटा हुआ कंबल ये कम बदल लें, कोई और कंबल ले लें, ये तो फटा हुआ है। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला की आंखों से आंसू बहने लग पड़े, तो वो परेशान हो गए और कहने लगे अगर मुझे इलम होता कि मेरी बात से आपको इतनी तकलीफ होगी तो मैं कभी ऐसी बात न करता। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाने लगे क्या तुम्हें पता है मुझे ये कंबल किसने ओढ़ाया था, किसने ये पहनाया था? तो वो कहने लगा नहीं। तो हजरत अली फरमाने लगे ये कंबल मुझे मेरे खलील उमर ने पहनाया था, यानी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की याद आ रही थी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी खिलाफत के जमाने में, और वो उनका कंबल ओढ़कर आंसू बहा रहे थे उनके गम में भाई। तो इन सहाबा के दरमियान इतनी मोहब्बत थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमाई है। सहाबा की मोहब्बत, सहाबा उनकी वजह से ही तो हमें दीन पहुंचा है। अगर सहाबा ही मशकूक हो जाएं फिर तो सारा दीन ही मशकूक हो गया, क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम का दीन पहुंचा ही किसके वास्ते से है? सहाबा के वास्ते से। सहाबा का वास्ता निकाल दें तो फिर तो ये दीन सारा ही मशकूक हो जाता है। नीज सहाबा अगर मशकूक हो गए, सहाबा तो शागिर्द हैं हुजूर अलैहि सलाम के, ये तो गोया हुजूर अलैहि सलाम पर बराह रास्त इल्जाम है कि आप उनकी सही तरबियत नहीं कर सके। तो शिया अजीब हैं, इनका मजहब अजीब है, सारी दीन की दीवारें ये गिराता हुआ चला जाता है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमाई है, अल्लाह ताला हम सबको आखिरत में सहाबा के साथ जमा फरमाए भाई। चलिए बस भाई, तो हासिल कलाम ये कि साहिब काफिया फरमाते हैं कि इस किस्म के मिसालों के अंदर तावील करके इनको नकेरा बनाया गया है। क्या बनाया गया है भाई? सारा इश्काल ही क्या था कि लाइन अफी जींस का इसम मारिफा आ रहा है, लिहाजा रफा भी होना चाहिए और तकरार भी होना चाहिए। तो साहिब काफिया ने आपको बतलाया कि इसको तावील करके नकेरा बना लिया गया, तो देखने में ये मारिफा है लेकिन हकीकत में क्या है? नकेरा। जब नकेरा है तो सारा एतराज ही खत्म, एतराज ही सिर्फ मारिफा होने की बिना पर हो रहा था कि रफा भी होना चाहिए और तकरार भी। जब ये नकेरा है फिर तो ये इश्काल नहीं होता। लाए नफी जिंस का इसम जब नकेरा हो और साथ मिला हुआ हो और मुजाफ हो तो फिर वो मंसूब होता है, और यहां भी तीनों शर्तें पूरी हैं, इसीलिए ये अबाहा सनिन मंसूब है भाई। बात समझ में आ गई, हल हो गया सारा। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।